الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا واتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرف القرآن جلد نمبر 5 سے جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 56, 57 اور 58 ہیں. ان کا ترجمہ پہلے پڑھیں گے، خلاصہ تفسیر، پھر اس کے بعد معرف و مسائل. اس سے پہلے کہ آیات کے ہم نے مکمل کر لیے تھے معرف و مسائل پڑھ کے پچھلی کلاس میں، تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت ان آیات میں فرماتے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے آپ، ادعو الذین زعمتم، ادعو کہ پکارو، دعا یدعو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، دعا کرنا، دعا کرنے کا مطلب پکارنا. تو یہاں پر جو ہے وہ کافروں کو کہنے کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، ادعو، پکارو تم، ادعو، الذین زعمتم من دونہ، ان لوگوں کو جن کو زعمتم تم سمجھتے ہو، تم زعم کرتے ہو، تم گمان کرتے ہو، جن لوگوں کو من دونہ اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا، اللہ کے بجائے، جیسے اردو میں کہتے ہیں بجائے اللہ تعالیٰ کے، جن لوگوں کو تم گمان کرتے ہو، ٹھیک ہے، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ، بس نہیں، يَمْلِكُونَ وہ مالک ہیں، وہ اختیار رکھتے ہیں، لَا يَمْلِكُونَ وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں، وہ مالک نہیں ہے، کشف الضری، کشفا کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، جیسے کوئی چیز کسی چیز کے اوپر رکھی بھی ہے نا تو وہ اس کو اس کے اوپر سے ہٹا دینا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کے اوپر کوئی اور چیز رکھی بھی ہوتی ہے تو وہ چیز اب کھل جاتی ہے، ایکسپوز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کشف کا جو ترجمہ ہے وہ ہٹانے سے بھی کرتے ہیں، کھولنے سے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر سیاق و سباق کے حساب سے کشف کا ترجمہ کیا ہوگا، کشف الضری، مشکل کا ہٹانا، ضر یعنی ضرر، جس کو اردو میں بھی کہتے ہیں نا ضرر، تکلیف، ٹھیک ہے، نقصان، تو کشف الضری نقصان کا ہٹانا، ضرر کا، تکلیف کا ہٹانا، ٹھیک ہے. تو فرمایا فلا یملکون کشف الضری، وہ نہیں اختیار رکھتے مشکل کو ہٹانے کا، تکلیف کو دور کرنے کا، عنکم تم سے، ٹھیک ہے، عن سے کم تم، ولا تحویلا اور نہ تحویل کا، تحویل کا مطلب کیا کہ اس کسی چیز کو بدل دینا، حول یحول تحویلا، تحویل کا مطلب کیا بدل دینا، तो ना तो तकलीफ को हटा देने का इख्तियार रखते हैं तुमसे और ना उसको बदल देने का इख्तियार रखते हैं, ठीक है। यानी तकलीफ को दूर करने का भी इख्तियार नहीं रखते और ना तकलीफ को आसानी से तब्दील कर देने का इख्तियार रखते हैं। तकलीफ को आसानी के साथ तब्दील कर देना, आसानी से तब्दील कर देना उसका इख्तियार रखते हैं। तो ये तो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते। कौन लोग जिनको तुम जुल्म करते हो, तुम जिनका जिनको तुम पुकारते हो, सॉरी जिसको जिनको तुम गुमान करते हो अल्लाह ताला के अलावा। क्या मतलब गुमान करते हो अल्लाह ताला के अलावा? इस बात का कि वो तुम्हारी तकलीफ को दूर कर देंगे या तुम्हारी तकलीफ को खुशी से तब्दील कर देंगे, आसानी के साथ तब्दील कर देंगे, ठीक है, आसानी से तब्दील कर देंगे। ये तो इसका इख्तियार नहीं रखते, ला यमलिकून, ये इसकी मिलकियत नहीं रखते। उलाइका वो लोग, अल्लदीना यदउना, जिनको के ये लोग पुकारते हैं, वो लोग जिनको के ये लोग पुकारते हैं, जिनसे ये लोग दुआ करते हैं, यबतगूना इला रब्बिहिम अलवसीला, ढूंढते हुए अपने रब की तरफ वसीला, ढूंढते हुए अपने रब की तरफ वसीला, अय्युहुम अकरबु, के कौन सा बंदा ज्यादा करीब है, कौन ज्यादा करीब है। अकरब कहते हैं ज्यादा करीब को, क्या मतलब कि वो लोग जिनको के ये लोग पुकारते हैं, ठीक है, किस लिए ये लोग पुकारते हैं, उन लोगों को अपने रब की तरफ वसीला बनाते हुए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अपने बुजुर्गों को कहते हैं कि हजरत आप दुआ कर दीजिएगा अल्लाह ताला से, ठीक है, हम अपने बुजुर्गों को क्या कहते हैं कि आप अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है वो अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिएगा कि मैं नेक बन जाऊं, अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिएगा कि मैं नेक बन जाऊं, ठीक है। अब ये दुआ आप खुद भी कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह आप मुझे नेक बना दीजिए, अल्लाह आप मुझे नेक बना दीजिए, लेकिन हम बुजुर्गों से कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा कि हम नेक बन जाएं, ठीक है। तो ये करना क्या हुआ, ये अपने रब के लिए बुजुर्गों को वसीला बनाना, ठीक है ना। डायरेक्ट आप अल्लाह ताला से दुआ नहीं कर रहे हैं बल्कि बुजुर्ग साहब से कह रहे हैं कि आप अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि हमने अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अपने बुजुर्गों को वसीला बनाया। क्या ये गलत बात है, क्या ये बुरी बात है जी, क्या ये बुरी बात है कि अपने बुजुर्गों को वसीला बनाए कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए? ये बुरी बात नहीं है। क्यों क्यों बुरी बात नहीं है? इसलिए कि हम अपने बुजुर्गों को दुआ करने के लिए कह रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए कह रहे हैं हमारे लिए, ठीक है ना। और क्यों कह रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला जो है ना वो मुत्तकियों की दुआओं को कबूल करते हैं, अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों की दुआओं को कबूल करते हैं, ठीक है, और हम अपने बुजुर्गों के बारे में ये गुमान रखते हैं कि वो मुत्तकी हैं, वो परहेजगार हैं, परहेजगारों की दुआ कबूल होती है, ज्यादा कबूल होती है। वैसे तो नाफरमानों की भी दुआ कबूल हो जाती है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कि अल्लाह ताला मुत्तकियों से कबूल करते हैं, ठीक है। तो हम फिर मुत्तकी साहब से जाके कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, तो उनको हम क्या कह रहे हैं, दुआ करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। हम उनसे दुआ नहीं कर रहे, हम अपने बुजुर्गों से दुआ नहीं कर रहे, हम अपने बुजुर्गों को पुकार नहीं रहे कि आप हमारी मुश्किल को दूर कर दीजिए, आप हमारी मुश्किल को आसानी के साथ तब्दील कर दीजिए, हम उनको ये तो नहीं कह रहे, हम उनको कह रहे हैं अल्लाह से दुआ कर दीजिए। लेकिन वसीला हम उनको बना रहे हैं, लेकिन वसीला किस काम के लिए बना रहे हैं, दुआ करने के लिए वसीला बना रहे, ठीक है, दुआ करने के लिए वसीला बना रहे। अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए, तो ये बात गलत नहीं है। लेकिन ये लोग जो है ना, यानी जो कुफार की जहां पे बात हो रही है, तो ये लोग ये नहीं करते थे कि बुतों को जो है वो वसीला बना रहे हैं कि आप अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए ताकि हम मुश्किल से निकल आए। नहीं, पहली बात तो ये कि बुत जो है वो कोई जिंदा इंसान है भी नहीं वैसे भी, ठीक है ना। तो उनसे आप क्या जाकर के कहेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करती है। बुत तो वैसे ही ना तो सुन सकता है और ना वो आगे कुछ बोल सकता है, बुत तो दुआ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दुआ करने के लिए नहीं कहते थे, ठीक है, बल्कि ये बुतों से ही दुआ करते थे, ये बुतों से ही दुआ करते थे, ये समझते हुए कि वो बुत ही जो है ना वही इनकी मुश्किल को दूर कर देंगे, ठीक है। और इसकी मजीद थोड़ी सी तफसील है वो आगे आएगी इंशाल्लाह। तो ये लोग इस तरीके से वसीला बनाते थे जिसको के मना किया गया है। तो यहाँ पे फरमाते हैं कि उलाइका वो लोग जिनको ये लोग पुकारते हैं, या जिन जिन झूठे खुदाओं को ये लोग पुकारते हैं अपने रब की तरफ वसीला बनाते हुए, सॉरी उलाइका, गड़बड़ कर दिया एक्चुअली मैंने, उलाइका वो लोग अल्लजीना जिनको ये लोग अल्लजीना यदऊना ये लोग पुकारते हैं, यबतगून अला रब्बिहिमुल वसीला था अय्युहुम अक़रबू, ठीक है। तो वो लोग खुद, अच्छा सॉरी एक्चुअली मैं खुद जो है वो उसको बयान करने में गलती कर दी है। तो यहां पर क्या है, अल्लजीना यदऊना जिनको ये लोग पुकारते हैं, ठीक है, यानी झूठे खुदाओं जिनको ये लोग पुकारते हैं, यबतगून अला रब्बिहिमुल वसीला था वो लोग अपने रब की तरफ जो है ना वो वसीला बनाते हैं, अय्युहुम अक़रबू कि कौन सा बंदा ज्यादा करीब है अल्लाह ताला के, वो यरजूना रहमतहु और अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार रहते हैं, अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार रहते हैं, वयखाफूना अजाबहु और उसके अजाब से डरते हैं, ठीक है। जिनको ये लोग वसीला बनाते हैं ना, सॉरी जिनको ये लोग पुकारते हैं ना, वो लोग तो खुद अपने परवरदिगार की तरफ वसीला ढूंढते हैं, ठीक है, वो लोग तो खुद अपने परवरदिगार की तरफ वसीला ढूंढते हैं कि कौन है ज्यादा करीब अल्लाह ताला का, वही अर्जुन रहमतहु और अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार रहते हैं, वही अखाफुन अजाबहु और अल्लाह ताला के अजाब से डरते हैं, ठीक है। इन अजाब रब्बिका काना महजूरा, बेशक तुम्हारे रब का अजाब ये तो महजूर है। महजूर का मतलब कि जिससे के डरना चाहिए, डरने वाली चीज है। वह इमिन करियतिन और नहीं है कोई करिया, यहाँ पे इन जो है वो नफी के लिए, नहीं और नहीं है कोई करिया, करिया कहते हैं छोटी बस्ती को, जैसे मदीना शहर को कहते हैं तो करिया जो है ना वो छोटी बस्ती को, छोटे टाउन को कहते हैं। तो नहीं है कोई करिया, इल्ला नहनु मुहलिकुहा कबला यौम कियामती, सिवाय इसके कि हमने उसको हलाक कर, हम उसको हलाक कर देंगे कयामत के दिन से पहले। कोई ऐसी बस्ती नहीं है कि जिसको कि हम कयामत के दिन से पहले हलाक न कर दें। बामुहावरा तर्जुमा इसका क्या, कि कोई ऐसी बस्ती नहीं है कि जिसको हम कयामत से पहले हलाक न कर दें, औ मुअज्जिबुहा या उसके ऊपर आफत डाल दें, यानी उसके ऊपर अजाब डाल दें, अजाबन शदीदा एक शदीद अजाब। तो बज़ाहिर तर्जुमे से क्या लगता है कि हर बस्ती के ऊपर अजाब आएगा, कयामत से पहले पहले हर बस्ती के ऊपर अजाब आएगा, ठीक है, ये तर्जुमे से ऐसा लगता है, लेकिन तफसीर इसकी ऐसी नहीं है, वो हम खुलासे तफसीर में पढ़ेंगे। कान ज़ालिका फ़िल किताबे मस्तूरा, ये है किताब में लिखा हुआ, मस्तूर यानी जिस तरह उर्दू में कहते हैं ना सतर, सतर लाइन को कहते हैं, तो लाइन बलाइन ये किताब के अंदर लिखा हुआ है। किताब कौन सी किताब, अल किताब लोहे महफूज, इसके अंदर ये बात हमने लिख दी है, यानी तकदीर के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि ऐसा होगा, कयामत से पहले पहले हर बस्ती जो है ना वो हलाक होगी या उसको जो है वो अजाब दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि लोहे महफूज में भी सिर्फ एक लाइन नहीं है, ठीक है। यानी ऐसा होता ना भाई, बहुत बड़ी किताब है तो फिर जो है वो एक ही लाइन के अंदर हर चीज लिखी हुई है। बल्कि जिस तरह से हमारी किताबों के अंदर, जैसे ये सामने हमारी किताब रखी हुई है, तो इसके अंदर एक सतर है, फिर उसके नीचे दूसरी सतर है, फिर उसके नीचे तीसरी सतर है, तो गोया कि एक सफा है उसके अंदर इस तरीके सतर 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 करके जो है वो भरा हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा सफा, फिर उसके अंदर भी जो है वो सुतूर हैं, पहली सतर, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन। बहरहाल जिस तरह से भी है, अल्लाह उसको ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मस्तूर का लफ्ज जो है वो लिखने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, कि लिखा गया है, लिखा हुआ है। खुलासे तफसीर में हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के शेख थे, तो उन्होंने इन आयात का मुख्तसर खुलासा, मुख्तसर तफसीर ऐसे करी कि आप, यानी नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इन लोगों से फरमा दीजिए, कह दीजिए, हाँ, कि जिनको तुम खुदा के सिवा माबूद करार दे रहे हो, खुदा के सिवा, मिन दूनी ही, ठीक है, खुदा के सिवा, दून का जो लफ्ज है वो सिवा बज
ना
होता है।
ना
तो जिनको तुम खुदा के सिवा माबूद करार दे रहे हो, जाम तुम मिन दूनी ही करार दे रहे हो, या गुमान कर रहे हो, जुर्म कर रहे हो उनके बारे में कि वो माबूद है, जैसे फरिश्ते और जिन्नात, ठीक है। क्योंकि ये जो मुशरिकीन मक्का थे, ये सिर्फ पत्थर के और लकड़ी के बुतों को माबूद करार नहीं देते थे, गुमान नहीं करते थे, बल्कि जिन्नात और फरिश्तों को भी माबूद बनाए हुए थे, ठीक है, उनकी भी इबादत किया करते थे। हालांकि जिन्नात जो है वो सामने इनके खड़े नहीं होते थे, फरिश्ते सामने आकर के इनके खड़े नहीं हो जाते थे, जिस तरह से बुत इनके सामने खड़े होते थे ना, उन्होंने खुद ही खड़ा किया था उनको, तो उनको जो है ना वो इमेजिनरी तौर पर अपना माबूद करार दिया हुआ था। फिजिकली कोई फरिश्ता सामने नहीं खड़ा हो, खड़ा करते थे कि चलिए भी फरिश्ते साहब आप खड़े हो जाए, अब हम आपको सजदा करेंगे, अब हम आपकी जो है वो इबादत करेंगे, ठीक है। उसी तरह कोई जिन आकर के इनके सामने खड़ा नहीं हो जाता था कि
अच्छा
खड़ा हो गया, अब तुम मेरे सामने सजदा करो, अब तुम इबादत करो, ठीक है। तो फिर कैसे ये उसकी इबादत करते थे? अपने जहन में, अपनी सोचों के अंदर उसकी इबादत करते थे, ठीक है। जैसे हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं ना, अल्लाह ताला हमारे सामने खड़ा तो नहीं होता, अल्लाह ताला हमारे सामने मौजूद तो नहीं होता, तो हम अल्लाह ताला की इबादत कैसे करते हैं, ठीक है। हम अपनी सोच में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, फिजिकली हमने अल्लाह ताला का कोई मुजस्मा अपने सामने बना के नहीं रखा हुआ होता ना। काबतुल्ला जो है ये कोई अल्लाह ताला का मुजस्मा कोई थोड़ी है, ठीक है ना, ये कोई अल्लाह ताला की शबीह कोई थोड़ी है काबतुल्ला, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक एक मुकाम है जहां पे अल्लाह ताला की तजलियात है, बस, वो भी किसी को पता ही नहीं कि यहाँ पे तजलियात आती है, सिवाय चंद मशाइख के जिन्होंने भाई इस बात को समझा अपने बड़ों से कि भाई वहां पे अल्लाह ताला के अनवारात तो तजल्लियात आते हैं जहां पे काबतुल्ला है, ठीक है। वरना तो हम काबतुल्ला तो सिर्फ एक डायरेक्शन है, काबतुल्ला तो सिर्फ एक जहत है, ठीक है ना, अल्लाह ताला को थोड़ी है काबतुल्ला के अंदर। तो फिर हम अल्लाह ताला की इबादत जो है वो कैसे करते हैं? अपनी सोच में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हमारी फिक्र ये होती है कि हम जो सजदा कर रहे हैं वो हम अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, काबतुल्ला को सजदा नहीं कर रहे, हम काबतुल्ला को सजदा नहीं कर रहे होते हैं, हम अल्लाह को सजदा कर रहे होते हैं। तो अल्लाह किधर है? अल्लाह तो मौजूद ही नहीं है यहाँ पर, काबतुल्ला की जगह पर। फिर सोच में सजदा कर रहे हैं, फिक्र में सजदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कुफारे मक्का जो है वो फरिश्तों को और जिन्नात को अपनी सोच में सजदा करते थे कि हम जन्नात को सजदा कर रहे हैं या हम जो है वो फरिश्तों को सजदा कर रहे हैं, ठीक है। और फिर पुकारते भी थे तो उनको ही पुकारते थे, ठीक है। तो इनके बुत, इनके जो झूठे खुदा थे ना, ये सिर्फ लकड़ी वाले नहीं थे, ये सिर्फ पत्थर वाले नहीं थे, बल्कि तखयल के भी थे, तखयल के। जब भी हमारे मशायख एक शेर पढ़ा करते हैं, बुतों को तोड़ तखयल के हों के पत्थर के, सारे बुतों को तोड़ दो, जो पत्थर के बुत हैं उनको भी तोड़ दो, और जो तुम्हारे तखय्युल के अंदर, तुम्हारी सोचों के अंदर झूठे खुदा बने हुए हैं ना, तुम उनको भी तोड़ दो। ठीक है, तरक्तुल लाता वल उज्जा जमीआ, मैंने लात और उज्जा सबको छोड़ दिया, जमीआ सब लात और उज्जा को, यानी जो जाहिर में मौजूद थे उन लात और उज्जा को भी मैंने छोड़ दिया, और जो मेरे सोचों के अंदर लात और उज्जा झूठे खुदा मौजूद थे मैंने उनको भी छोड़ दिया। ठीक है, तो ये डिमांड है हमसे दीन इस्लाम की। तो ये लोग जाहिर है इन्होंने जो है वो पत्थर और लकड़ी के भी बुत बनाए हुए थे, और इन्होंने तखैल के भी बुत बनाए हुए थे। आज हमने पत्थर और मिट्टी के और लकड़ी के बुत तो अल्हम्दुलिल्लाह छोड़े हुए हैं, लेकिन तखैल के बुत हमने नहीं छोड़े हुए, सोचों के अंदर जो हमने बुत समाए हुए हैं वो हमने नहीं छोड़े हुए। ठीक है, तो हम उनके साथ जो है वो कम से कम आधी मुशाबहत रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है पूरी मुशाबहत नहीं रखते लेकिन आधी मुशाबहत तो रखते हैं। ठीक है, उससे भी तौबा करने की जरूरत है। तो फरमाते हैं कि आप इन लोगों से फरमा दीजिए कि जिनको तुम खुदा के सिवा माबूद करार दे रहे हो, जैसे फरिश्ते और जिन्नात, जरा उनको अपनी तकलीफ दूर करने के लिए पुकारो तो सही। ठीक है, उदउ उदउ उनको पुकारो तो सही, सो वो ना तुमसे तकलीफ को दूर करने का इख्तियार रखते हैं, ला यमलिकूना कशफ दुर्री अनकुम वला तहवीला, और ना उसके बदल डालने का, मसलन तकलीफ को बिल्कुल दूर ना कर सकें, चलो कुछ हल्का ही कर दें, कुछ हल्का ही कर दें, कुछ कमी कर दें तकलीफ को, नहीं वो तो इसका भी इख्तियार नहीं रखते। ये लोग के जिनको मुशरिकीन अपनी हाजत रवाई या मुश्किल कुशाई के लिए पुकार रहे हैं, वो खुद ही अपने रब की तरफ पहुंचने का जरिया ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो फरिश्ते हैं और ये जो जिन है ना, ये खुद भी अपने रब तक पहुंचने का वसीला ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो है तर्जुमे ना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी शुरू में, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फिर उससे रुजू कर लिया, उससे उसकी इसलाह कर दी, लेकिन शुरू में आपको जरा मैं सही नहीं बता रहा था। ठीक है, तो अगर कोई कंफ्यूज हो गया था तो उस वक्त तो वो फिर से इस इबारत को और से पढ़ भी ले और समझ ले कि यही मतलब है कि वो फरिश्ते और जो जिन है ना, वो खुद अपने रब की तरफ पहुंचने का जरिया ढूंढ रहे हैं, वसीला ढूंढ रहे हैं कि इनमें कौन ज्यादा मुकर्रब बनता है, यानी वो खुद ही अताअत व इबादत में मशगूल हैं ताकि अल्लाह ताला का कुर्ब मुयस्सर हो जाए, और चाहते हैं कि तकर्रुब का दर्जा और बढ़ जाए। ठीक है, फरिश्ते तो सारे के सारे इसी मेहनत में लगे हुए हैं, और जिन्नात उनमें से जो मोमिन जिन हैं वो सारे के सारे इस मेहनत में लगे हुए हैं कि अल्लाह ताला के मुकर्रब बन जाए, अल्लाह ताला के करीब हो जाए, उनका दर्जा अल्लाह ताला के यहाँ बढ़ जाए। ठीक है, और वो इसकी रहमत के उम्मीदवार हैं, यानी फरिश्ते और जिन्नात, मोमिन जिन्नात वो अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार हैं और उसके अजाब से नाफरमानी की सूरत में डरते हैं। ठीक है, कि अगर हमने आपकी नाफरमानी कर दी तो आपका अजाब हमारे ऊपर आ जाएगा, इससे हमें डर लगता है, तो फरिश्ते भी डरते हैं और ईमान वाले जिन्नात भी डरते हैं, मोमिन जिन भी डरते हैं। ठीक है, अब जाहिर है काफिर जिन ये तो अल्लाह के अजाब से नहीं डरते हैं ना, लेकिन मोमिन जिन ये अल्लाह ताला के अजाब से डरते हैं। वाकई आपके रब का अजाब है भी डरने वाली चीज, डरने के काबिल चीज है। मतलब ये है कि जब वो खुद आबिद हैं तो माबूद कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये लोग तो आबिद हैं, इबादत करने वाले, माबूद तो उसको कहते हैं कि जिसकी इबादत की जाए। तो आबिद और माबूद ये दोनों सिफात किसी एक हस्ती में जमा नहीं हो सकते हैं कि वो आबिद भी हो और माबूद भी हो, नहीं। इबादत एक ऐसी चीज है जो कि किसी हस्ती में या तो बतौर फाइल की होगी या बतौर मफूल की होगी, यानी वो हस्ती वो जात या तो आबिद होगी या माबूद होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। जैसे कोई भी नबी हो, फरिश्ता हो, जिन हो, ठीक है, तो ये सब के सब जो है ना ये आबिद हैं, इनमें से कोई भी माबूद नहीं है, माबूद सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह ताला आबिद नहीं है, अल्लाह ताला के अंदर इबादत करने वाली सिफत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के अंदर इबादत किए जाने वाली सिफत है, ठीक है। और जब वो खुद ही अपनी जरूरियात में और तकलीफ के दूर करने में अल्लाह ताला के मुहताज हैं, तो वो दूसरों की हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जिन और ये फरिश्ते जो हैं, या ये पत्थर के बुत, या लकड़ी के बुत, या मिट्टी के बुत, ये कोई हाजत रवाई मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते हैं, वो तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही कर सकती है। फरमाते हैं कि कुफार की, अच्छा अगली आयत में, व इम मिन करियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा, तो उसकी तफसीर में हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह, मुफ्ती मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुफार की ऐसी कोई बस्ती नहीं जिसको अमद से पहले हलाक ना कर दें, कुफार की, ठीक है। इम मिन करियतिन, इसके अंदर तफसीर किया है कि ये हर बस्ती की बात नहीं हो रही, बल्कि काफिरों की बस्ती की बात हो रही है, ठीक है, यानी नाफरमानों की कोई ऐसी बस्ती नहीं जिसको हम कयामत से पहले हलाक ना कर दें, या कयामत के रोज उसके रहने वालों को दोजख का सख्त अजाब ना दें, औ मुअज्जिबूहा अजाबन शदीदा, मुअज्जिबूहा अजाबन शदीदा, या कयामत के दिन उनको उसके रहने वालों को दोजख का शदीद अजाब ना दें। ये बात किताब यानी लोहे महफूज में लिखी हुई है। बस अगर तफसीरन बयान कर रहे हैं कि बस अगर कोई काफिर यहाँ हलाक होने से बच गया तो कयामत के रोज की बड़ी आफत से नहीं बचेगा, और तबई मौत से हलाक होना तो कुफार के साथ मखसूस नहीं, सभी मरते हैं, ठीक है। तबई मौत तो हर एक को आनी है ना, चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो। इसलिए बस्तियों के हलाक होने से इस जगह मुराद ये है कि किसी अजाब और आफत के जरिए हलाक किया जाए, ठीक है। तो बस्तियों के हलाक होने का मतलब क्या है कि इज्तिमाई शक्ल में अजाब आ जाए, ठीक है, वरना इनफरादी तौर पर तो हर काफिर के ऊपर उसकी मौत की शक्ल में अजाब आता ही है, मोमिन के ऊपर उसकी मौत की शक्ल में अजाब नहीं आता, बल्कि उसको जो है वो सिर्फ मुंतकिल कर दिया जाता है दूसरे जहान में। लेकिन काफिर के ऊपर जब मौत आती है तो वो मौत अजाब की शक्ल में होती है, क्योंकि उसको फिर जहन्नुम के पहले दर्जे यानी कब्र के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है, तो वो उसके लिए आजाब होता है, ठीक है। तो मौत तो हर एक के ऊपर आनी है, लेकिन जब बस्ती की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि इज्तिमाई शक्ल में हलाक करके यहाँ पे फरमा रहे हैं। तो बस्तियों के हलाक होने से जगह मुराद ये है कि किसी अजाब और आफत के जरिए हलाक किया जाए। तो खुलासा ये हुआ कि कुफार पर कभी तो दुनिया में अजाब भेज दिया जाता है, यानी इज्तिमाही शक्ल में अजाब भेज दिया जाता है, और आखरत का अजाब उसके अलावा होगा। और कभी ऐसा भी होता है कि दुनिया में कोई अजाब नहीं आया, क्या मतलब कोई अजाब नहीं आया, इज्तिमाही शक्ल में कोई अजाब नहीं आया काफिर के ऊपर, ठीक है, तो आखरत के अजाब से बहरहाल उनको निजात नहीं है, तो आखरत में तो अजाब आएगा ही आएगा। तो ये बात जो है वो हमारे जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब अजाब का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि इज्तिमाई शक्ल में लोगों को जो है वो हलाक कर दिया जाए, ठीक है। कोई सवाल हो अगर तर्जुमे या खुलासा तफसीर के बारे में तो पूछ लीजिए। आगे चलते हैं मारुफ मसाइल, तो उसमें फरमाते हैं सिर्फ इसके बारे में कि यबतगून इला रब्बिहिमुल वसीला, इस कतरे के मारूफ मसाइल बयान कर रहे हैं, बाकी सारी आयात के या सारी अल्फाज के बयान नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर यबतगून इला रब्बिहिमुल वसीला में फरमाते हैं कि लफ्ज वसीले से मुरब से मानी हर वो चीज जिसको किसी दूसरे तक पहुंचने का जरिया बनाया जाए, और अल्लाह के लिए वसीला ये है कि इल्म अमल में अल्लाह ताला की मर्जी की हर वक्त रियायत रखे और अहकाम शरईया की पाबंदी करे। मतलब यह है कि ये सब हजरात अपने अमल सालेह के जरिए अल्लाह ताला के तकर्रुब की तलब में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अपने आमाल को वसीला बनाना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ वसीला बनाना कहलाता है कि नेक आमाल करना, ठीक है। उसी तरह किसी नेक आदमी से अपने लिए दुआ करवा लेना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ पहुंचने का एक वसीला है। तो वो नेक आदमी से जो दुआ करवाई जाती है ना, तो वो भी क्यों करवाई जाती है, क्योंकि उस नेक आदमी के साथ एक ताल्लुक होता है। तो नेक आदमी के साथ ताल्लुक रखना ये खुद भी एक नेकी, ये खुद भी एक नेकी है। ठीक है, अगरचे के इंसान गुनाह का काम कर रहा हो, गुनाहों की जिंदगी गुजार रहा हो, लेकिन जब नेकों से मोहब्बत रखता है ना, तो वो एक एक नेकी है जो कि वो कर ही रहा है, बाकी सारे गुनाह कर रहा है, लेकिन ये एक नेकी उसने करी हुई है कि नेकों के साथ उसने अपना एक ताल्लुक बना करके रखा हो। ठीक है, तो ये भी जो है ना, अपने नेक अमल को वसीला बनाना ही है, ये उस बंदे को वसीला नहीं बना रहा। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि नेक बंदे को वसीला नहीं बना रहा अल्लाह तक पहुंचने का, बल्कि अपनी इस नेकी को अल्लाह ताला तक पहुंचने का वसीला बना रहा है। कौन सी नेकी? नेकों के साथ ताल्लुक रखने वाली नेकी। ठीक है, नेकों के साथ ताल्लुक रखने वाली नेकी को वसीला बना रहा है। ठीक है, अब ये नेकों के साथ ताल्लुक रखने वाली नेकी, ये कैसे? आपने कोई सवाल करे कि भाई ये आपने कहां से नेकी बना दी, नेकों से ताल्लुक रखने को नेकी कैसे बना दिया आपने? जस्ट बिकॉज आप जो है वो पीरी मुरीदी वाले लोग हैं, आप जो है वो तसव्वुफ वाले लोग हैं, आपने जो है वो किसी शेख के साथ जो है वो अपना बैत का ताल्लुक बनाया हुआ है, तो इस वजह से आपने इस ताल्लुक को जो है वो नेकी करार देना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई सवाल ये कर सकता है, तो इसका क्या जवाब होगा भाई? कि नेकों के साथ ताल्लुक रखना, इस्लाही ताल्लुक रखना, बैत का ताल्लुक रखना, मोहब्बत का ताल्लुक रखना, ये नेकी है। कैसे? क्या दलील है इस बात की कि ये नेकी है? जी माशाल्लाह, एक जवाब तो आ गया इसका, डायरेक्ट मैसेज में तो बाकी लोग पढ़ नहीं सकते, तो कोई और अगर इसका जवाब दे कि ये कैसे नेकी है, नेकों के साथ ताल्लुक रखना नेकी कैसे? जी ठीक है, इन्होंने रोमन में इसका तर्जुमा जो है वो लिख दिया, भाई कुरान मजीद का हुक्म है ना ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन। दोनों हुक्म है कि तुम खुद भी गुनाहों से बचो, लेकिन दूसरा हुक्म क्या है? कूनू मअस्सादिकीन, नेकों के साथ हो जाओ, नेकों के साथ ताल्लुक बना लो अपना। नेकों के साथ हो जाओ का मतलब ये नहीं है कि अपने ऊपर ग्लू लगाओ और उनकी पीठ के ऊपर भी ग्लू लगाओ और जाकर के चिपक जाओ उनके साथ। क्या ये मतलब है कि चिपक जाओ उनके साथ, फिजिकली चिपक जाओ? फिजिकली तो कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ जाके नहीं चिपक सकता, या सर्जरी करवा लो किसी तरीके से कि उनके साथ जो है ना वो अपने आप को बांध लो किसी तरीके से, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या मतलब है कूनू मअ सादिकीन, कि उनके साथ ताल्लुक बना करके रखो? तो भाई ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म के अगर कोई ऊपर बंदा अमल कर रहा है तो क्या ये नेकी नहीं है? तो और क्या नेकी है फिर? ठीक है, तो बेशक वो अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर पा रहा, अपनी जुबान की हिफाजत नहीं कर पा रहा, ये सारे गुनाह है, तो कूनू ये इत्तकुल्लाह वाले हुक्म के ऊपर तो ये अमल नहीं कर पा रहा, लेकिन दूसरे हुक्म के ऊपर तो अमल कर रहा है ना। ठीक है, तो वो इस नेकी को अल्लाह ताला तक पहुंचने का वसीला बना रहा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की मर्जी की हर वक्त रियायत रखे और अहकाम शरिया की पाबंदी करे। भाई जिस तरह से अहकाम शरिया ये है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये भी तो अकीमुस्सला व आतुल ज़का, उसी तरीके से कूनू मअ सादिकीन, ये भी तो अल्लाह का हुक्म ही है ना। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। तो अगेन कि ये लोग जो जिन लोगों को पुकारते हैं ना, तो वो लोग इनके ऊपर से मुश्किल हटाने की तो सलाहियत नहीं रखते। ठीक है, बल्कि वो लोग तो खुद अल्लाह ताला का कुर्ब तलाश कर रहे हैं, वो तो खुद जो है वो अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिशें कर रहे हैं। यरजूना रहमतहु व यखाफून अजाबहु। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला ने फरमाया कि रजा और खौफ, यानी अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार भी रहना और डरते भी रहना, ये इंसान के दो मुख्तलिफ हाल हैं। जब ये दोनों बराबर दर्जे में रहे तो इंसान सही रास्ते पे चलता रहता है, और अगर इनमें से कोई एक मغلوب हो जाए तो इसी मकदार से इंसान के अखबार में खराबी आ जाती है। ठीक ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार रिपीट होता ही रहता है कि नबी अलैहिस्सलाम जैसे फरमाया, अल ईमान बैनर रजा इवल खौफ, कि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान रहता है, दरमियान वाली कैफियत होती है। यानी क्या मतलब दरमियान वाली? ना तो उम्मीद है ना खौफ है, नहीं, ये मतलब नहीं है कि दरमियान में रहने का मतलब है कि ना उम्मीद हो ना खौफ हो, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि उम्मीद भी रहे और खौफ भी रहे, उम्मीद भी रहे और खौफ भी रहे, दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? या तो उम्मीद रहेगी या खौफ रहेगी इंसान के ऊपर, दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, बल्कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जिनके अंदर उम्मीद रहे और कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनके अंदर खौफ रहे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे बड़े समझाते हैं कि जब जब तंगी की हालत आए, मुश्किल की हालत आए, तो उस वक्त जो है ना वो उम्मीद गालिब रहे इसके ऊपर, ये अपने ऊपर उम्मीद को गालिब रखे कि मेरे ऊपर जो मुश्किल और तंगी आई है, मेरा रब इसको मुझसे दूर करने के ऊपर कादिर है। ठीक है, अल्लाह ताला इस मुश्किल को मुझसे दूर कर सकते हैं, जब अल्लाह ताला का फैसला होगा नो प्रॉब्लम, ये मुश्किल तकलीफ मुझसे दूर हो जाएगी। इसको कहते हैं उम्मीद को गालिब कर लेना अपने ऊपर। और जब मुश्किल तकलीफ से छुटकारा मिल जाए और बहुत खुशी और फरहत वाली जिंदगी गुजार रहा है, उस वक्त खौफ गालिब हो उसके ऊपर। क्या कि ये जो अच्छी हालत जिसके अंदर मैं रह रहा हूं ना, ये अच्छी हालत मेरे परवरदिगार की रहमत है, अगर अल्लाह ताला चाहे तो इसको मुझसे वापस ले लें, ये मुझसे छीन लें, नो प्रॉब्लम अल्लाह ताला के लिए, बहुत आसानी के साथ अल्लाह ताला जो है ना वो मुझे तकलीफ में मुब्तला कर सकते हैं, ये खौफ इसके ऊपर गालिब रहे। ठीक है, बीमारी की हालत में उम्मीद गालिब रहे और सेहत की हालत में खौफ गालिब रहे। ठीक है, सेहत की हालत में खौफ गालिब रहे, उसी तरीके से जवानी की हालत में खौफ गालिब रहे और बुढ़ापे की हालत में उम्मीद गालिब रहे। ठीक है, तो इस तरीके से अल ईमानु बैनर रजा एवल खौफे के दोनों साथ साथ चलते रहते हैं ईमान वाले की जिंदगी के अंदर। ठीक है, जब नेकी कर रहा है, जब नेकियां कर रहा है, तो खौफ गालिब रहे, यानी नेकी करता भी रहे और डरता भी रहे। किस चीज से डरता रहे? कि ये जो मैं नेकी कर रहा हूं, ये मैं महज अल्लाह की तौफीक से नेकी कर रहा हूं, अगर अल्लाह ताला मुझसे इस तौफीक को छीन ले तो मैं नेकी नहीं कर सकूंगा। नेकी मैं कर तो रहा हूं, अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है, मैं नेकी कर तो रहा हूं, लेकिन अगर अल्लाह ताला इन नेकियों को कबूल ना करें तो मेरी इन नेकियों का कोई फायदा नहीं है। मैंने नेकी करी, अल्लाह की तौफीक से नेकी करी, ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने किसी दूसरे बंदे को तौफीक दी, उसने मेरी नेकी की तारीफ कर दी। ठीक है, कितनी जबरदस्त बात है, एक तो इंसान नेकी कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बात है ना, नेकी कर रहा है, उसके ऊपर डबल जबरदस्त बात, दूसरे लोग तारीफ भी करना शुरू हो गए, क्या जबरदस्त नेकी कर रहे हैं आप, क्या बात है आपकी, क्या जबरदस्त बात आपने करी, क्या जबरदस्त आपने बात मुझे समझाई, क्या जबरदस्त आपसे मुझे फायदा हासिल हुआ। हो, कितनी जबरदस्त बात है कि लोग भी तारीफ कर रहे हैं आपकी नेकी की, लेकिन ऐसे हालत में खौफ गालिब रहे कि ये लोग जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, इनकी तारीफ से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं अपने परवरदिगार के पास पहुंचा और उसने तारीफ ना करी, तो फिर इन लोगों की तारीफों का क्या फायदा होगा? इसी वजह से हमारे मशायख हमें बार बार इस तरह की बातें बताते हैं, इस तरह की कहावतें बताते हैं, जैसे एक कहावत बताते हैं, यानी ये वो रियल वाकया नहीं है, ये जिसको जरबुल मिसल कहते हैं, कहावत कहते हैं, एनेक्डोट कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, कि एक दुल्हन थी, बड़ी सजी बनी हुई बैठी हुई थी, तो उसकी सहेलियां उसके घर जमा थी, उन सहेलियों ने उसकी इस बनावट की, इसकी सजावट की, इसकी खूबसूरती की तारीफ करने शुरू शुरू कर दी। ठीक ठीक है ना, दुल्हन साहिबा की दोस्तों ने, सहेलियों ने उसकी सजावट बनावट की तारीफें करनी शुरू कर दी, तो वो दुल्हन रोना शुरू हो गई। तो उसकी सहेलियों ने कहा कि ये रोने की कौन सी बात है, हम तुम्हारी तारीफ करें तो तुम खुश हो इसके ऊपर कि हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम इतनी अच्छी लग रही हो तो रोने की कौन सी बात है इसके अंदर। तो उस दुल्हन ने जवाब दिया कि मैं ये सोच करके रो रही हूं कि जब मैं अपने पिया के पास पहुंचूंगी, यानी मैं अपने दुल्हा के पास पहुंचूंगी, अगर उसको मैं पसंद ना आई तो तुम लोगों की तारीफें मेरे किस काम की। ठीक है ना, तो वो मौका क्या था, उस दुल्हन के ऊपर खुश होने का मौका था, लेकिन उस वक्त उसके ऊपर खौफ गालिब आ गया कि अगर मेरे दुल्हा ने मुझे पसंद नहीं किया तो फिर इन लोगों की तारीफें मेरे क्या काम आएंगी। उसी तरीके से हम नेकी कर रहे हैं, हम लोगों को दीन का फायदा पहुंचा रहे हैं, दुनिया का फायदा पहुंचा रहे हैं, और लोग हमारी वाह वाह भी कर रहे हैं, उस वक्त ये फिक्र अपने ऊपर गालिब कर लें कि अगर अल्लाह ताला ने कबूल ना किया तो इन लोगों की तारीफों का मुझे क्या फायदा होगा, ये कब्र में आकर के क्या आप जन्नत की खिड़की खोल सकते हैं मेरी कब्र में, ये कयामत के दिन जो है वो मुझे पूरे सिरात के ऊपर से गुजार देंगे ये लोग जो मेरी तारीफें कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला के अजाब से कयामत के दिन मुझे बचाने की कुदरत रखते हैं। उसका जवाब एक ईमान वाले के पास क्या आएगा, नहीं हरगिज नहीं रखते, कयामत के दिन तो क्या ये मेरे काम आएंगे, ये तो खाली इस कब्र के घड़े के अंदर मेरे काम नहीं आ सकते, जो कि इन्हीं की दुनिया के अंदर कब्र बनी हुई होती है, कब्रिस्तान यही होता है ना, हमारे शहर के अंदर ही होता है ना, बस्ती के अंदर ही होता है ना, लोगों के करीब होते हैं ना, हमारे घर से बहुत दूर तो नहीं होता, तो हमारे खानदान वाले जो है वो आराम से गाड़ी में बैठे कब्रिस्तान आए और कब्रिस्तान में कब्र खोद करके जो है वो अंदर कीड़े मकोड़े जब आ रहे होंगे हमारी तरफ तो वो कीड़े मकोड़ों को मार के भगा सकते हैं ना, लेकिन क्या कोई ऐसा करता है, क्या कोई ऐसा कर सकता है। एक जगह पे कहीं पे पढ़ा कि जब मुर्दा कब्र के अंदर डाल दिया जाता है ना तो उसके पेट की जो कीड़े होते हैं ना, उसके बदन के अंदर के जो कीड़े होते हैं, वो कीड़े जो हैं वो बाकायदा अपने अंदर से स्मेल खारिज करते हैं, बदन के कीड़े यानी जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ये बैक्टीरिया जो है ना ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं, ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और ये फिर अपने अंदर से स्मेल खारिज करते हैं, बैक्टीरिया स्मेल खारिज करते हैं, और ये स्मेल क्यों खारिज करते हैं, ये जमीन में मौजूद दूसरे कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये स्मेल खारिज करते हैं, ये स्मेल जो है ना ये इनविटेशन, कॉल फॉर इनविटेशन होती है हशरातुल अर्ज के लिए कि आओ और तुम भी खाओ, हम अकेले नहीं खाएंगे, हम मिल बैठ के खाएंगे इसको। तो ऐसे में किसी की माँ आकर के उसको बचाएगी, किसी का बेटा आकर के उसको बचाएगा, किसी का शौहर, किसी की बीवी आकर के उसको बचाएगी कि नहीं ये हमारे तो बड़े डेलिकेट किस्म के थे, राइट, तो इनको मत खाइए प्लीज, कौन कर सकता है ये वाला काम। ठीक है, तो इस तरह से ना इंसान को अपने ऊपर खौफ गालिब रखना और उम्मीद गालिब रखना कि जब मायूसी की कोई कैफियत हो रही हो, जो है वो तकलीफ की मुश्किल की कैफियत हो, तो उस वक्त जो है अल्लाह बेशक मेरे ऊपर अजाब है और ये अजाब है मेरे गुनाहों की वजह से, लेकिन ए अल्लाह आप इस गुनाह के अजाब को मुझसे दूर फरमा दीजिए, आप बेशक अजाब को दूर करने वाले हैं, आप मुआफ करने वाले हैं, आप मुआफी को पसंद करते हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, और अल्लाह ताला की माफी से हरगिज हरगिज मायूस ना हो। इन्होंने लिखा है कि जहन्नुम का कौन सा दर्जा जुदा तकलीफ दे होगा, पहला या आखिर, ज्यादा तकलीफ दे होगा। ठीक है, जिन लोगों को आलिमा बनने का शौक है ना तो वो सबसे पहले तो ना अपनी उर्दू के ऊपर मेहनत करें, ठीक है, उर्दू के ऊपर मेहनत करें, उर्दू पढ़ना और उर्दू लिखना, ठीक है, ये उर्दू पढ़े और लिखे बगैर जो है ना वो जस्ट फॉरगेट इट। ठीक है, तो ज्यादा का लफ्ज है, इसको जदा नहीं लिखते, जुदा नहीं लिखते, जीम से नहीं होता, ये ज ज से होता है, जे से होता है, ज्यादा। ठीक है, तो जहन्नुम का कौन सा दर्जा ज्यादा तकलीफ दे होगा, पहला या आखिरी? ठीक है, तो सबसे निचला दर्जा जो होगा ना, जहन्नुम के दर्जे, जहन्नुम के लेवल्स है, ठीक है, तो सबसे जो निचला लेवल होगा वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे होगा, ठीक है। फिर दरकिल असफले मिन अन्नार, ये इसमें कौन होंगे? मुनाफिक होंगे, ठीक है। असफल मिन अन्नार, असफल मिन अन्नार यानी असफल का मतलब सबसे ज्यादा नीचा, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो दर्जा होगा वो सबसे कम तकलीफ दे होगा, ठीक है। उसके अंदर जो है वो ईमान वाले होंगे, जिनके गुनाह जो है वो अभी तक मौजूद है उनके ऊपर, यानी ना कब्र के अजाब से उनके गुनाह खत्म हुए, ना जो है वो कयामत के दिन की सख्तियों से उनके गुनाह खत्म हुए, और उनके ऊपर अभी भी गुनाह बाकी हैं। इतने गुनाह थे, इतने गुनाह थे, इतने गुनाह थे, कि अल्लाह ताला की रहमत जो कयामत के दिन 99 हिस्सा अल्लाह ताला की रहमत मौजूद थी, उससे भी उनके गुनाह नहीं धुल सके, इतने गुनाह थे। तो वो जहन्नुम में जो जाएंगे वो जहन्नुम के सबसे ऊंचे दर्जे के अंदर होंगे, सबसे पहले दर्जे के अंदर होंगे, सबसे कम तकलीफ देह दर्जे के अंदर, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद जो है वो ईसाई होंगे अगले दर्जे के अंदर, उसके नीचे वाले दर्जे के अंदर जो है वो यहूदी होंगे, उसके नीचे वाले दर्जे के अंदर जो है वो मजूसी शायद होंगे, या फिर उसके बाद मुशरिकीन होंगे, फिर आखिरी दर्जे के अंदर जो है वो मुनाफिकीन होंगे। और ये कौन से वाले मुनाफिकीन होंगे? ये अमली मुनाफिकीन नहीं होंगे, कि जब झूठ बोल जब बात करते तो झूठ बोलते थे, जब वादा करते थे तो वादा खिलाफी करते थे, जब अमानत रखाई जाती थी तो खयानत करते थे, लेकिन ईमान वाले थे। नहीं, ये लोग आखिरी दर्जे में नहीं होंगे, ये लोग तो पहले दर्जे में होंगे, ठीक है ना। ऐसे जो मुनाफिकीन ना, जो कि अमली तौर पर निफाक का शिकार थे, ये तो वो लोग होंगे जो कि जहन्नुम के सबसे ऊंचे वाले दर्जे के अंदर होंगे, ठीक है। आखिरी दर्जे के अंदर कौन से वाले मुनाफिकीन होंगे? जिनका अकीदा ही कुफर वाला अकीदा होगा, ठीक है, अकीदे के एतबार से जो काफिर होंगे, और ऊपर से अपने आप को मुसलमान जाहिर करते होंगे, ये आखिरी दर्जे के अंदर होंगे, ठीक है। बाकी जो आगे की आयात है फिर इंशाल्लाह हम अगली अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। मजीद किसी को कोई सवाल है या कुछ बोलना है तो? ठीक है, यहाँ पर मैं आशा दावाना अलहमदुल्ला रब्बिल आलमीन।